नमस्कार भारत, आज 18 फरवरी दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। दरगाह पर हमले के बाद पाकिस्तान ने देश भर में 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारा। अफगानिस्तान को सौंपी 76 हाई प्रोफाइल चरमपंथियों की सूची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी आज विधानसभा में हासिल करेंगे विश्वास मत। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया चुनाव प्रचार, देर से मैदान में उतरने पर हो रहे हैं सवाल। सुनिएगा कैफी आजमी के आजमगढ़ में मतदाता के मन में क्या है।
आजमी हरियोत सिंह उपाध्याय ये लोग फेमस है तो कह रहे नहीं और कुछ ज्यादा फेमस उससे, तो हम लोग बोला जैसे कह रहे यहाँ का टेररिज्म वो बताइए, हम वो जानना चाहते हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मशहूर सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हमले के बाद हरकत में आई पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा किया है और कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान को 76 मोस्ट वॉन्टेड चरमपंथियों की सूची सौंपी है जिन्होंने अफगानिस्तान में शरण ली है। गुरुवार को सेहवन में मशहूर दरगाह पर आत्मघाती हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उत्तर कोरिया ने मलेशिया से अपने नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई के शव की मांग की है। मलेशिया में उत्तर कोरिया के राजदूत ने किम जोंग नम के शव के पोस्टमार्टम को हरी झंडी नहीं देने की बात कही और उत्तर कोरिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं मानेगा ये भी कहा। मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर सोमवार को किम फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे तभी जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस अस्पताल में शव रखा गया है उसके बाहर उत्तर कोरिया के राजदूत कैंग चोल ने ये कहा।
हम मलेशिया की सरकार से जोरदार तरीके से ये अपील करते हैं और मांग भी करते हैं कि मलेशिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ काम कर रही ताकतों के साथ मिलकर किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा न बने। ये ताकतें हमारे देश की छवि खराब करना चाहती हैं। हम मलेशिया से तुरंत शव वापस करने की मांग करते हैं। ये थे कैंग चोल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ईपीए के प्रमुख पद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित उम्मीदवार स्कॉट प्रूइट को काफी विरोध के बाद सीनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने पद की शपथ ले ली है। स्कॉट प्रूइट अमेरिका के ईपीए के कड़े आलोचक रहे हैं। उन पर तेल और गैस कंपनियों से नजदीकियों के आरोप भी लगते रहे हैं। ओक्लाहामा की अदालत ने उन्हें इन कंपनियों को भेजे गए ईमेल सार्वजनिक करने को कहा था। पर्यावरण समूहों का कहना है कि उन्हें डर है कि स्कॉट प्रूइट ऊर्जा कंपनियों के लिए नियमों में ढील दे सकते हैं। इसके अलावा ईपीए के कर्मचारियों ने भी उन्हें पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख पद के लिए अयोग्य बताते हुए एक खुला पत्र लिखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की फैक्ट्री में कहा कि वो अमरीका में नौकरियां वापस लाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था कि उनका प्रशासन सही तालमेल के साथ चल रहा है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन मैकेन इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को इस्तीफा देना पड़ा वो इस बात के संकेत है कि व्हाइट हाउस में सब कुछ ठीक नहीं है। म्यूनिक में एक सम्मेलन में जॉन मैकेन ने ये कहा।
They would be alarmed by an increasing turn away from universal values and toward
वो इस बात से चौंकेंगे कि हम वैश्विक मूल्यों से हटकर खून, नस्ल या फिर सांप्रदायिकता के रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। अप्रवासियों और अल्पसंख्यकों, खासकर कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत, सच को झूठ से अलग करने में नाकामी को देखकर भी लोग परेशान होंगे, लेकिन कई देशों के आवाम, यहां तक कि अमरीका में भी लोग दुनिया के संतुलन को बनाने में पश्चिम की भूमिका की अहमियत को नहीं देख पाएंगे। ये थे जॉन मैकेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीस डी कर्चनर के सेनाध्यक्ष रहे सेसर मिलानी को मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये मानवाधिकार के मामले 70 और 80 के दशक के हैं जब उन पर सैनिक शासन के दौरान दो लोगों के अपहरण, शोषण और गैरकानूनी तौर पर बंदी बनाने के आरोप लगे थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। इस हमले में कम से कम 80 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में चरमपंथियों के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान का मानना है कि दरगाह पर हुए हमले और दूसरे हमलों में पाकिस्तान से बाहर के चरमपंथियों का हाथ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 76 हाई प्रोफाइल चरमपंथियों को सौंपने की मांग रखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अफगान सीमा से सटे सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद नफीस जकारिया ने कहा, आतंकवादी तत्व दरगाह का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने अफगानिस्तान से सहयोग की अपील की है और कुछ खुफिया जानकारी भी साझा की है। हमें उनसे केवल खुफिया जानकारी ही नहीं बल्कि सीमा की सुरक्षा में भी मदद चाहिए। ये थे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के शब्द। और अब सीधे चलते हैं इस्लामाबाद बीबीसी संवाददाता शुजा मलिक के पास। शुजा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक दिन में पाकिस्तान की सेना ने 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारा है, कैसे संभव हुआ ये सब?
जी अमरीश जी, पाकिस्तानी फौज के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ISPR ने बताया कि पंजाब समेत मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी किया गया है। तहम अभी तक ये नहीं बताया गया कि मारे जाने वाले या गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द कौन थे और उन्हें किन किन इलाकों में टारगेट किया गया। हुकाम का कहना है कि इन ऑपरेशंस की तफसीलात जल्द ही शेयर कर दी जाएंगी।
ऐसी मीडिया रिपोर्टें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितनी सच्चाई है इन खबरों में?
अब तक हमारे पास भी ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तानी फौज ने पाक अफगान सरहद पर मोमंद और खैबर एजेंसी के करीब कार्रवाई की है, जिसमें 4 दहशतगर्दों के 4 कैंप्स और 1 ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। ताहम इन इतलात की सरकारी सतह पर या आजादाना तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। एक चीज़ जो अहम है इस मामले में कि उस एरिया में टेरेन बहुत मुश्किल है और सरहद की डिमार्केशन भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई हुई है। तो ये अभी देखना बाकी है कि सुबह या एक रोज़ में पाकिस्तानी फौज इसको कंफर्म करती है या नहीं कि अफगान टेरिटरी के अंदर ऑपरेशन किया गया है।
शुजा मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा है कि वो 76 चरमपंथियों को उसके हवाले करे, लेकिन अफगानिस्तान का इस पर क्या कहना है, ये जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी पश्तो सेवा के हमारे सहयोगी सईद अनवर से।
अफगान हुकूमत ने कहा है कि इस तरह के डिमांड और दोनों ममालिक के दरमियान दरवाजे बंद करने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं होता। अफगान हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान खुद दहशतगर्दी के फ्रंट लाइन में है। अफगान हुकूमत का ये भी कहना है कि दाइश या आईएस अफगानिस्तान में भी हर रोज मासूम इंसानों की जान लेता है और इस शिदत पसंद ग्रोह से जो अफगान हुकूमत ने मुश्तरक दुश्मन का नाम लिया है, कहा है कि मिलकर जंग करना हल का रास्ता है। और अफगान सदर के नायब तर्जुमान शाह हुसैन मुर्तजई ने BBC को बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दरवाजे बंद करने और इस तरह के डिमांड करने की बजाय शिदत पसंदों की जो पनागाह है उसे निशाना बनाना चाहिए।
सईद अनवर साहब, पाकिस्तान सरकार जिन 76 हाई प्रोफाइल लोगों का नाम ले रही है, कह रही कि उन्हें सौंपा जाना चाहिए, क्या ये लोग अफगानिस्तान में छिपे हैं?
पाकिस्तान तो कई सालों से इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तानी शिदत पसंद या तालिबान के कुछ अहलकार या लीडरान अफगानिस्तान में है, लेकिन अफगान हुकूमत मुतवातिर बार बार इसकी तकदीर कर चुका है और कहा है कि तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के लीडरान एक तो अफगानिस्तान में नहीं है, अगर है भी तो उन सरहदी इलाकों में है, दूरफ्तदा और पहाड़ी इलाके हैं जहाँ अफगान हुकूमत की पहुंच से दूर है। इसलिए अफगान हुकूमत ने गुज़श्ता सालों में और जब से अफगानी इत्तेहाद हुकूमत बनी है, इनका कहना यह है कि अफगान हुकूमत ने तो बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को डॉक्यूमेंट्स पेश किया है कि افغان طالبان کے سربراہان پاکستان میں ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے ابھی تک ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے کہ پاکستانی طالبان کے اہلکار یا لیڈران افغانستان میں ہیں اور وہ افغان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں موجود ہوں۔
یہ تھے بی بی سی پشتو سیوا کے ہمارے سہیوگی سعید انور۔
بی بی سی انڈیا بول۔
کشمیر میں پتھر بازی کرنے اور چرم پنتھیوں کو مدد کرنے والوں کو آتنکوادیوں کا کھلا سمرتھک مانے گی سینا اور ان کے ساتھ ویسے ہی نپٹے گی۔ کیا سینا پرمکھ جنرل بپن راوت کی اس چیتاونی سے کشمیر کی اشانتی کم کرنے میں مدد ملے گی؟ کشمیریوں کے دل و دماغ کو جیتنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس بار انڈیا بول میں چرچا اسی وشے پر ہوگی۔ کارکرم میں حصہ لینے کے لیے شنیوار 18 فروری شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 یا 1800-102-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
تمل ناڈو میں راجیہ کے نئے مکھیہ منتری پلنی سامی کے لیے آج کا دن بے حد خاص ہے۔ آج انہیں ودھان سبھا میں وشواس مت حاصل کرنا ہے۔ 234 سدسیہ ودھان سبھا میں ستاداری اے آئی اے ڈی ایم کے 134 ودھائک ہیں، لیکن پچھلے دنوں ودھائکوں کے سمرتھن کو لے کر جو راجنیتک کھینچ تان ہوئی ہے اس سے سب کی نظریں آج کے وشواس مت پر رہیں گی۔ ہریتا، آج کے اخبار پلنی سامی کے راجنیتک بھوشیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
سب سے پہلے انڈین ایکسپریس کی بات، انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ تمل ناڈو میں آج 11 بجے ووٹنگ ہونی ہے اور ریسورٹ سے ودھائکوں کو لایا جانا ہے جو کئی دنوں سے ریسورٹ میں رہ رہے ہیں۔ ششی کلا کے مکھیہ منتری بننے کی جب بات چل رہی تب سے وہیں پر ہیں وہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ پلانی سامی کا کہنا ہے کہ وشواس مت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ضروری آنکڑے ہیں، وہ نمبرس ہیں۔ 134 میں سے 124 ودھائک ان کے ساتھ ہیں، جبکہ جو باقی کے 10 ہیں وہ پنیر سیلوم کے ساتھ ہیں، اور کل ہی ایک اور ودھائک نے پالا بدل لیا تھا اور وہ پنیر سیلوم کے خیمے میں چلے گئے ہیں۔ جنستہ نے لکھا ہے کہ کانگریس میں ابھی مت بھید ہے، کانگریس کے کچھ ودھائک جو ہیں وہ ڈی ایم کے کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن جو کانگریس پردیش کمیٹی کے ادھیکش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہی الگ رہا جائے اور کوئی بھی کانگریس ودھائک جو ہے وہ اس ووٹنگ میں شامل نہ ہو۔ اور دینک بھاسکر نے لکھا ہے کہ 30 سال بعد جو ہے تمل ناڈو ودھان سبھا میں شکتی پریکشن ہو رہا ہے، مطلب 30 سال پہلے بھی جو ہے وہ انا درمک اے آئی اے ڈی ایم کے ہی وہ پارٹی تھی جس کو کہ شکتی پریکشن کرنا پڑا تھا۔
جی، یعنی سب کی نظریں آج پلنی سامی پر ہی رہیں گی۔
جی، اور اس پر دینک بھاسکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو وپکشی پارٹی ہے ڈی ایم کے، اس کے پرمکھ اسٹالن نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تنج کسا ہے کہ مجھے دیکھ کر نام مسکرائے، جیسے کہ او پنیر سیلوم ان کے سامنے مسکرائے، اس کے بعد کافی مصیبت میں پڑے اور ان کو ورودھ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
اور کیا خبریں ہیں؟
ہندوستان ٹائمز نے ایک خبر دی ہے اپنے پہلے پنے پر کہ سینا ادھیکش کے بیان پر کیندر سرکار کا سمرتھن جو ہے کیا ہے، اور سینا ادھیکش نے کہا تھا کہ کشمیر میں چرم پنتھیوں کا جو ساتھ دے گا اسی طرح سے نپٹا بھی جائے گا۔ تو رکشا منتری منوہر پریکر نے کہا ہے کہ سینا کو پوری سوتنترتا ہے۔ اس پر پنجاب کیسری نے لکھا ہے کہ جموں کشمیر کی مکھیہ منتری ہیں محبوبہ مفتی نے چیتاونی دی ہے کہ مڈ بھیڑ ستھلوں کو لے کر جو ہے لوگوں کو وہاں سے دور رہنا چاہیے، اور سینا کو پوری سوتنترتا ملنی چاہیے کہ وہ آتنکوادیوں سے، چرم پنتھیوں سے نپٹ سکے۔
انڈیا بول کا ہمارا وشے بھی اسی پر ہے، تو ہمارے شروتا اس میں ضرور شامل ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہریتا اخباروں کی سمیکشا کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کی ودھان سبھا کی 69 سیٹوں کے لیے تیسرے چرن میں کل ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اب چناؤ ان علاقوں میں ہیں جو سماجوادی پارٹی کا گڑھ مانے جاتے ہیں۔ وہیں چوتھے چرن میں 23 فروری کو کانگریس کے گڑھ رائے بریلی میں ووٹنگ ہونی ہے۔ یہاں کل کانگریس سماجوادی پارٹی گٹھ بندھن کے پکش میں پرچار کرنے کے لیے پرینکا گاندھی میدان میں اتری۔ انہوں نے بچھراواں ودھان سبھا میں ایک ریلی کو سمبودھت کیا۔ ہمارے سہیوگی سمیر آتمج مشر نے اس ریلی کے بعد پرینکا کے پرچار کو لے کر لوگوں سے بات کی۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کانگریس نیتا راہل گاندھی کی ریلی ختم ہوئی ہے رائے بریلی کے جی آئی سی میدان میں۔ ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں، ان لوگوں کو انتظار تھا، جو میں نے سنا ہے کہ لوگ پرینکا گاندھی کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے تو آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ آئیں تو ان کے بولنے کا، لیکن بولی نہیں۔ ایسی آپ لوگوں کی امید تھی؟ کیسا لگا؟
بولنے کی امید تھی لیکن انہوں نے نہیں بولا، اس سے تھوڑی سی جو ہے نراشا الگ ہوئی۔
روڈ شو ہے،
بولنا چاہیے تھا۔
کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بولی ہے؟
سمے ابھاؤ تھا۔ راہل گاندھی مانی راہل گاندھی جی جو کانگریس پارٹی کے اپادھیکش ہیں، انہوں نے جنتا کو سمبودھن کیا۔
پرینکا نہیں بولی اس لیے ان کے پاس ٹائم کم تھا، ان کو بھی ایک جگہ اور جانا تھا۔
اچھا، آپ لوگ رائے بریلی کی ہیں تو پرینکا گاندھی اکثر آتی رہتی ہیں؟
ہاں، اکثر آتی رہتی ہیں۔
ملتی ہیں آپ؟
ہاں ہاں، ہم لوگ ملتے ہیں، ہم سب جگہ ملتی ہیں ہم لوگوں کو۔ راہل گاندھی بھائی ان کے ساتھ آتی ہے راہل گاندھی پرینکا
سے کیا بات کرتی ہیں کچھ بتائیں؟
مطلب بات کرتی، ہم لوگ سموہ میں جڑے ہوئے ہیں تو بتاتی ہے۔ ہم لوگ ان کے سموہ سے جڑ کے ہم لوگ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری غریب جو بہنیں ہیں وہ آج ان کے اس سے کافی اٹھ گئی ہیں۔ और अगर वो आज को जीत जाएंगे हम लोग उनको वोटिंग देंगे तो आगे हम लोग को और लाभ ही तो होएगा।
अच्छा, आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ती है वो प्रियंका गांधी?
प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ में खड़ रहती हैं, कहीं अगर भाई लड़ेगा वो लड़ेंगी तो फिर ये तो दोनों वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
यहाँ प्रियंका गांधी को लेकर के जो चर्चा होती है कि प्रियंका गांधी में लोग एक तरह से कहते हैं कि वो यहाँ के लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, इस तरह का?
भाई सदर में तो देखो अखिलेश सिंह का है, पिछले साल प्रियंका ने प्रचार किया था, सीट तो अखिलेश सिंह की निकली थी, उसके पहले निर्दलीय लड़े थे तब भी उनके लिए। यहाँ सदर में किसी की आंधी तूफान का कोई मतलब
नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी का वर्चस्व है, उनके पिता राजीव गांधी जी और यहाँ पे सोनिया गांधी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की कर्मभूमि रही है, तो कांग्रेस का ये गढ़ है। यहाँ से अमेठी और रायबरेली में उनका बहुत वर्चस्व है, बहुत प्रियंका जी बहुत लोकप्रिय है।
बचरावा में लोगों से बातें कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। कांग्रेस दावा करती रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कराने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। दावा यह भी था कि प्रियंका चुनाव प्रचार में बड़ा रोल निभाएंगी और अमेठी रायबरेली की परंपरागत सीटों से आगे बढ़ेंगी, लेकिन प्रियंका पहले तीन दौर के लिए प्रचार में नजर नहीं आई। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यही पूछा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से।
यह सच है कि जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बातचीत हुई तो उस बातचीत को सरे अंजाम देने की जिम्मेवारी श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद साहब को दी गई। उन्होंने इस भूमिका को एक सक्रिय और क्रियात्मक तरीके से निभाया। प्रियंका जी सदैव दोनों जो उनके गृह क्षेत्र हैं अमेठी और रायबरेली वहां प्रचार करती रही हैं। इससे आगे चुनाव में उनका प्रचार करना या ना करना उनका निजी निर्णय है। उनके आने से इस पूरी सपा कांग्रेस गठबंधन को एक नई स्फूर्ति एक नई बढ़त मिली है और इसका पूरे प्रांत में फायदा होगा।
आपने कहा कि नई तरह की राजनीति की कोशिश हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से भी निजी हमले लगातार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आ जाई और सीधा वार उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहा।
कांग्रेस पार्टी कभी भी व्यक्तिगत छींटाकशी और आक्षेप में विश्वास नहीं करती। अगर आज प्रियंका गांधी जी ने नोटबंदी से सभी वर्गों खास तौर से महिलाओं के नुकसान की बात कही तो उसमें निजी हमला क्या है? अगर नोटबंदी इस देश की तालाबंदी है ये राहुल गांधी कहते हैं तो उसमें निजी हमला नहीं।
जब उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगातार राहुल गांधी के चेहरे के साथ अखिलेश यादव के चेहरे को आगे करते हुए वोट मांग रहे हैं तो उससे ब्रांड कांग्रेस जो है वो कहां जा रही है?
कांग्रेस पार्टी ने एक से अधिक बार कहा कि इस गठबंधन का ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को शक्तिशाली करने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, पर एक सच्चाई है कि मोदी सरकार से देश के लोग खफा हैं और उन नीतियों का विरोध करने में समानांतर विचारधारा वाले जितने राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ चलना चाहें हमने हमेशा उनका स्वागत किया है।
ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में आजमगढ़ का नाम काफी ऊपर है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शिक्षा, राजनीति या संस्कृति में इस इलाके के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर पिछले डेढ़ दशक से आजमगढ़ की पहचान अंडरवर्ल्ड और टेरर फैक्ट्री जैसे शब्दों से की जाने लगी है। जब जब चुनाव आते हैं तो दूसरी जगहों की तरह यहां भी सरगर्मी बढ़ जाती है, लेकिन मुद्दा क्या रहता है? बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने शहर के 100 साल से भी ज्यादा पुराने शिबली कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने वालों से यही जानना चाहा।
असल में बहुत बदकिस्मती रही है कि आजमगढ़ एक जैसे पॉलिटिकल खेती के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि यहाँ से सिर्फ फसल काटी जाती है और कभी भी यहाँ के डेवलपमेंट पे जो तवज्जो होनी देनी चाहिए थी वो कभी यहाँ पे दी नहीं गई। इतना बड़ा शहर इतना टीवी पे आता है लेकिन एजुकेशनली बैकवर्ड है, बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात एक जमाना था यहाँ पे 12 एमपी आजमगढ़ के सिर्फ थे, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शहरों के आजमगढ़ के रहने वाले, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं छूट गया है।
लेकिन अक्सर कहा जाता है कि भाई आजमगढ़ जो है कुछ चीजों के लिए एलिगेशंस है, ऐसे एक्यूजेशंस है कि वो खासा बदनाम रहा है, उसका क्या सेंस मिलता है? क्या आपके दोस्त यार बाहर से क्या पूछते हैं या बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है?
पूछते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के सिटीजन हो, हम लोग बताते हैं तो कहते हैं ये शहर ये तो बहुत बदनाम है, तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है, जबकि हमारे शहर ऐसा नहीं है, हमारे शहर के बच्चे बहुत अच्छे हैं।
ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बड़े डॉक्टर बन के आते हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं और बहुत बड़े बड़े चेहरे आजमगढ़ के। चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता, हाईलाइट क्या किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम को बस किसी तरह से कंट्रडिक्ट रहा। यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिल के रहते हैं, थोड़ी सी यहाँ की जो ट्रेडिशन है एक दूसरे से बिल्कुल घुले मिले हुए हैं, किसी को किसी से नफरत नहीं, लेकिन उसको इस तरह से इलेक्शन के मौके पे खराब करके कि हम किसी तरह से किस तरह से पोलराइज करें, किस तरह से वोट इकट्ठा कर लें।
आजमगढ़ को पिछले कुछ सालों में 8-10-12 सालों में कुछ खास चीजों के लिए है, लोग उस पर बात करते हैं, उस पर बातें होती हैं कि साहब यहाँ पर एलिगेशंस रहे हैं कुछ कथित टेरर कैंप ग्रुप्स के, एलिगेशंस रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के आरोप रहे हैं कि एक तरह से अंडरवर्ल्ड की फैक्ट्री है आजमगढ़ उसके आसपास के गांव। क्या आपको लगता है कि ये इन चीजों से आपको कितना फर्क पड़ा है भारत में जब आप जाते हैं दूसरी जगह?
सर बहुत फर्क पड़ा है, ऐसा कि यहाँ पर कहीं भी अगर मुंबई हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं प्रेशर दिया जाता है कि मतलब ऐसा नहीं, इन लोगों को मत लीजिए, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा करते हैं।
हम लोगों से पूछा गया कि आप आजमगढ़ से क्या फेमस है यहाँ पे, तो हमने बताया कि यहाँ के कैफी आजमी, हरिओत सिंह उपाध्याय, ये लोग फेमस है, तो कह रहे नहीं और कुछ ज्यादा फेमस उससे। तो हम लोग बोला जैसे कह रहे यहाँ का टेररिज्म वो बताइए, हम वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ के हम लोग को इस शहर के आजमगढ़ से नाम से नहीं जाना जाता, हम लोग को इसलिए जाना जाता है कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं।
अल्लामा इकबाल सुहेल का शेर भी है, इस खत्ते आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है, जो जुजर यहाँ से उठता है वो नई अरे आजम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लोगों ने गलत धाराएं बना ली आजमगढ़ के नाम पे।
आप बताइए क्या उम्मीद है कि चीजें कभी बेहतर होंगी, जल्दी होंगी, कौन कर सकता है बेहतर?
जी हम ही लोग कर सकते हैं।
आजमगढ़ के शिबली कॉलेज में छात्रों छात्राओं और शिक्षकों से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत में दिल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक बार आर्टरी ब्लॉक होने का पता चला नहीं कि मरीज की हालत स्टेंट लगाने के खर्चे को लेकर और बुरी हो जाती है, लेकिन अब एक उम्मीद बंधी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने भारत में स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के स्टेंट की कीमत निर्धारित कर दी है। सुनिए विनित खरे की रिपोर्ट।
जनवरी में 42 वर्षीय विकास रंजन को दिल में दर्द महसूस हुआ। पता चला कि इस कम उम्र में उनके दिल की धमनियों में रुकावट है। डॉक्टर ने स्टेंट लगाने की सलाह दी। एक विदेशी कंपनी के स्टेंट का इस्तेमाल किया गया और इसका बिल था 1,28,000 रुपए का। अस्पताल से छूटने के बाद विकास ने जांच में पाया कि आयातित स्टेंट की कीमत मात्र 23,000 रुपए है। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया लेकिन शांत रहे।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल जैसे शब्दजंग हो गया या जयप्रकाश नारायण हो गया, इन सब जगह में वो 50,000 से 60,000 में मिल जाते हैं।
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या NPPPA के नए आदेश के मुताबिक धातु के स्टेंट की कीमत 7,260 रुपए होगी। धातु के स्टेंट का इस्तेमाल अब बेहद कम होता है क्योंकि उसके कारण होने वाली पेचीदगियां ज्यादा हैं। DES यानी जिन स्टेंट से दवा रिसती है और धमनियों को साफ करने में मदद मिलती है, उनकी कीमत 29,600 रुपए होगी। बाजार में अभी DES की खपत 80% है। एक नए तरह की प्राकृतिक तरीके से घुल जाने वाली या बायोडिग्रेडेबल स्टेंट की कीमत भी 29,600 रुपए तक रखी गई है। भारत में पिछले 10 सालों में दिल के ऑपरेशनों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 3.2 करोड़ लोग हृदय रोगी हैं और हर वर्ष इससे 16 लाख लोगों की मौत होती है। भारत में स्टेंट लगवाने की पूरी प्रक्रिया 3 से 5 गुना कम होने के कारण विदेश से भी कई लोग भारत आते हैं। इस ताजा कदम से आम लोगों को तो फायदा होगा लेकिन कई विशेषज्ञ इससे खुश नहीं है। आलोचक कहते हैं कि इस फैसले से भारत में उपलब्ध स्टेंट की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और कंपनियां अब महंगे अच्छे स्टेंट बाजार में उपलब्ध नहीं करवाएंगी। भारत में एंजियोप्लास्टी के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकाल के मुताबिक इस फैसले से भारत में आने वाली विदेशी रोगियों की संख्या पर असर पड़ सकता है। हालांकि NPPA प्रमुख भूपेंद्र सिंह इस बात से इनकार करते हैं।
क्लिनिकली बोथ आर इक्वली गुड एंड आई एम नॉट सेइंग इट, इट इज बीइंग सेड बाय।
भूपेंद्र सिंह कह रहे थे दोनों ही स्टेंट अच्छे हैं और ये मैं नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। दोनों ही तरह के DES में कोई फर्क नहीं है। उधर डॉक्टर मैथ्यू कहते हैं
इंडिया मेड स्टेंट has not come up.
डॉक्टर मैथ्यू के मुताबिक कोई भी भारतीय स्टेंट अमरीकी एजेंसी FDA से मान्यता प्राप्त नहीं है और अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जो ये साबित करे कि विदेशी स्टेंट भारतीय स्टेंट से बेहतर हैं। उनके अनुसार इसका कारण यह है कि भारतीय स्टेंट कंपनियों ने कभी खुद को विदेशी स्टेंट कंपनियों के मुकाबले में पेश ही नहीं किया है। उधर भारत की सबसे बड़ी स्टेंट बनाने वाली कंपनी मेरिल के प्रेसिडेंट राम शर्मा कहते हैं कि इस फैसले से मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। राम शर्मा कह रहे थे, भारत में हम पहली कंपनी है जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है और आविष्कार किया है। इस कदम से हमारी जैसी भारतीय कंपनियों को मारा जा रहा है। हम बहुत सारे नए स्टैंड पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दाम सीमित करने के बाद ये कौन करेगा, मुझे उन्हें बंद करना पड़ेगा। उधर भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि कंपनियां 65-70% के मुनाफे पर काम कर रही हैं और दाम कम होने से ज्यादा लोग स्टेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। राम शर्मा को डर है कि स्टेंट के दाम गिरने के बाद अस्पताल अब स्टेंट लगाने की डॉक्टरी फीस के अलावा दूसरे दाम बढ़ा सकते हैं। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
इस हफ्ते दो फिल्में रिलीज हुई हैं, द गाजी अटैक और इरादा। अगर आप ये फिल्में देखने की योजना बना रहे हैं तो उससे पहले हमारे फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी की राय जरूर जान लें। प्रस्तुति है सुमिरनप्रीत कौर की।
इस हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्में, पहली द गाजी अटैक जिसमें नजर आ रहे हैं राणा दागुबती, तापसी पन्नू, के मेनन और अतुल कुलकर्णी। दूसरी तरफ रिलीज हुई फिल्म इरादा, जिसे डायरेक्ट किया है अपर्णा सिंह ने और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, दिव्या दत्ता और सागरिका घाटके।
जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर रात का है।
इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी। तो अर्णब, कौन सी फिल्म के बारे में आप पहले बात करना चाहेंगे, क्या है आपका इरादा?
इरादा एक बहुत रेलेवेंट फिल्म है क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल इशू पर फिल्म आधारित है। ये जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो पंजाब में फैला हुआ है, इस वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा कैंसर रेट हाई है। यानी लुधियाना में तो शायद पूरे कंट्री में हाईएस्ट कैंसर रेट रहा है, जिसकी वजह से एक कैंसर ट्रेन भी चलती है। तो इस इशू को उठाया गया है और इस हिसाब से इसलिए मुझे लगता है कि इरादा एक बहुत रेलेवेंट फिल्म है। बहरहाल फिल्म बहुत नेचुरल बनते बनते रह गई क्योंकि कहीं ना कहीं टिपिकल मुझे लगता है बॉलीवुड खास मेन स्ट्रीम का जो इन्फ्लुएंस है वो एक्टर्स पे बहुत हावी रहा है। इरादा को 5 में से 2 दूंगा।
पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के खिलाफ कोई ऑफेंसिव मिशन लॉन्च किया है। कराची से सबमरीन गाजी को रवाना कर दिया गया है।
लेफ्टिनेंट कमांडर अर्जुन कहाँ है?
यह सिर्फ सर्च ऑपरेशन है।
मुझे लगता है द गाजी अटैक एक इम्पॉर्टेंट फिल्म हो सकती है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि इट्स वेल इंटेंशनड। यानी ऐसी फिल्में तो बनती नहीं है हमारे देश में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी घटना जो हम भूल चुके हैं हिस्ट्री में, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। ये अटैक हुआ था 71 में पाकिस्तान वॉर से पहले। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई गाने नहीं है। साउथ में ये चलेगी क्योंकि राणा दागुबती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ज़रूर है कि फिल्म कई जगह नाटकीय हो गई है, मुझे कहीं कहीं कॉमिक बुक का असर आ रहा था फिल्म में। मैं द गाजी अटैक को 5 में से 2 दूंगा।
फिल्म की समीक्षा के बाद थोड़ी चर्चा खेल की दुनिया की।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। भारत दौरे पर अपने अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अच्छी शुरुआत की है। भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच के पहले दिन कल कंगारू टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। जहां कप्तान स्टीव स्मिथ और शॉन मार्श ने शतक लगाया, वहीं पीटर हैंडस्कॉम 45 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे। दूसरे दिन मिचेल मार्श 16 और मैथ्यू वेड 7 रन से आगे खेलना शुरू करेंगे। 3 दिन के इस अभ्यास मैच में भारत ए टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मशहूर सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हमले के बाद हरकत में आई पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा किया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान को 76 मोस्ट वांटेड चरमपंथियों की सूची सौंपी है। उत्तर कोरिया ने मलेशिया से अपने नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई के शव की मांग की है। अमरीका में पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ईपीए के प्रमुख पद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित उम्मीदवार स्कॉट प्रूइट को काफी विरोध के बाद सीनेट से मंजूरी मिल गई है, उन्होंने शपथ ले ली है। बीबीसी समाचार।
आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात 7:30 PM दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की पल पल बदलती खबरें और उनका विश्लेषण देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। तो अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।